जब तीर्थ यात्रा करके कोई आवे तो अपने बंधु बांधवों को, मित्रों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को प्रसाद पवारे, है ना, उधर नियम। तो मैंने स्मरण दिलाया नीलमणि प्रभु को कि आपको वैष्णवों को बुलाकर प्रसाद पवाना चाहिए, कीर्तन कथा करना चाहिए। कहा ठीक है, तो ये दिन निश्चित किया गया था। बड़े भाग्य की बात है कि आप सब आए हैं और श्री राधा जीवन प्रभु भी अकस्मात आ गए हैं, प्रद्युम्न प्रभु दूर से। तो आप सबका स्वागत है। ये उत्तराखंड की यात्रा करके आए थे, अतः उत्तराखंड के विषय में कुछ कहने की इच्छा है। उत्तराखंड का अर्थ, खंड का अर्थ होता है प्रदेश, स्थान, और उत्तर शब्द है या उत्तरा शब्द है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो उसी को उत्तराखंड कहते हैं। वह सबके द्वारा मान्य है कि वह देव भूमि है। वास्तव में मनुष्यों की भूमि वो नहीं है, देवताओं की भूमि है, देव भूमि। आज भी जहां तहां लिखा गया शब्द देव भूमि उत्तराखंड, वहां देवता आते हैं, अपने लोक से विहार करते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं। तो हिमालय शुरू से ही परम पवित्र और भगवत भक्ति में स्थान रहा है, जहां जीवन का परम श्रेय प्राप्त करने के लिए लोग जाते थे, रहते थे। संसार के उपद्रव से बच करके भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, और ऋषिगण आपस में भगवत वार्ता करते थे, इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है। सब प्रकार के डिस्टर्बेंस से लोग बच जाते थे। आज देख ही रहे कि कितना भारी डिस्टर्बेंस बाहर समाज में, तो दूर की बात है, अपने घर में ही टीवी सबसे भारी डिस्टर्बेंस है ना। वास्तव में सबके सामने समस्या है कि क्या किया जाए। यदि बच्चों को टीवी नहीं देखने देंगे तो जी नहीं पाएंगे, दूसरे के घर में जाएंगे है ना, और देखने के लिए छूट देंगे तो उनका गला ही काटने के समान है, उनकी चेतना पूर्ण संसारिक हो जा रही है, पूर्ण अशुद्ध। तो इस प्रकार जब मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का उपद्रव बढ़े, क्या करे क्या न करे, ऐसे समय में याद आती है कि पहले के लोग कैसे थे। घर द्वार छोड़कर राजा चले जाते थे वन में, राजा जाते थे जो 20 वर्ष 25 वर्ष शासन किए थे, वे राजा छोड़ करके राज्य वन में चले जाते थे और अपने पुत्र को बताते नहीं थे कि हम इस वन में जा रहे हैं, तुम हमको कुछ भेज देना, मैं दिक्कत में रहूंगा, कोई खबर नहीं देते थे। कुछ भी खबर परिचय नहीं देते थे कि हम यहां रहेंगे वहां रहेंगे, और निश्चिंत भगवान का भजन करते थे। तो हिमालय आज भी अपने उसी रूप में है और भगवान के पवित्र धाम जहां तहां हैं, और सबसे बड़ा तीर्थ श्री गंगा जी की जन्मभूमि हिमालय है, और जमुना जी की और अन्य भी पवित्र नदियां हिमालय से निकलती हैं। हमने देखा है अपने गांव में नहीं, हमारे मामा के हैं, एक व्यक्ति जा रहे थे हिमालय, बहुत पहले की बात है बचपन, तो घर के सब लोग स्टेशन पर जुटे, रेलवे स्टेशन, और विदा दे रहे थे तो सदा के लिए विदा दे रहे थे, दो को वृद्ध थे और हिमालय जा रहे थे ये सोच करके कि अब लौटने नहीं। पहले संभावना रहती थी कि कोई लौटेगा नहीं, क्यों कि एक तो इच्छा बदल जाती थी लोगों की, जो व्यक्ति यहां के झंझट से मुक्त होकर जाते थे हिमालय, तो फिर इधर लौटने की इच्छा नहीं होती थी, इतना उन्हें सुख मिलता था। और दूसरी बात ये थी कि ऐसा विपत, ऐसा रास्ता था कि कहीं भी गिर करके मर जाने की संभावना थी, और लोग इस शौक से ये मनाया करते थे कि हे भगवान, हिमालय में कहीं गिर करके शरीर छूट जाए, अच्छा होता उस पवित्र स्थान में। तो दोनों तरह से कोई उनके मन पर असर नहीं था। अगर मान लीजिए मन लग गया रहने लगे तब तो और बेटर, और शरीर छूट गया तो उससे भी बेटर। इतना निश्चिंत होकर के लोग जाते थे। आजकल के लोगों के मन में इतना भारी बंधन है कि हाय रे, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे परिवार चलेगा, क्या होगा, है ना, बहुत बड़ी चिंता है। यह चिंता कुछ खास समय के लिए आवश्यक है, कोई फालतू नहीं है, परंतु जीवन भर के लिए ये चिंता शोभनीय नहीं है। समय के अनुसार काम करना चाहिए किसी व्यक्ति को। जवानी में धन संचय करना है, धन संचय करना, परिवार का पालन करना, पढ़ाना लिखाना, और सामाजिक व्यवहार के अनुसार काम करना, ये तो बहुत आवश्यक है। लेकिन अंततः ये तो जानना चाहिए कि हम किसी भी समाज के नहीं हैं, अभी देह के ही नहीं हैं। देह में से हम निकल कर चले जाएंगे, देह यहां राख होगा या जल में डाल दिया जाएगा, कोई जीव खाएगा, अथवा जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा। इस शरीर के साथ भी जब संबंध नित्य नहीं है तो परिवार के साथ और देश समाज आदि के साथ क्या संबंध है किसी का। यह तो सत्य है। अतः जैसे देह में हम रह रहे हैं, देह की मालिश कर रहे हैं, देह को खिला रहे हैं, सजा रहे हैं, उसी तरह से परिवार समाज के साथ संबंध है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति को, भक्त को समझना चाहिए कि मैं इन सबसे परे हूं, बियॉन्ड, और अपने स्वार्थ को सबसे पहले देखना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, महाभारत में लिखा गया है कि यदि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ में और परिवार के स्वार्थ में यदि टकराहट हो तो अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए, परिवार का पर्पस पूरा करना चाहिए। और परिवार में और संपूर्ण गांव के पर्पस में टकराहट हो तो वहां गांव का ही पूरा करना चाहिए, परिवार के लक्ष्य को, परिवार के फायदा को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। और यदि गांव से और जनपद से विरोध हो, किसी एक का पर्पस पूरा करना हो, तो उसमें जनपद का ही पूरा करना चाहिए। इस तरह से कहते कहते कहा गया है कि और आध्यात्मिक स्वार्थ पूरा करना हो एक व्यक्ति को, और दूसरे तरफ सारी पृथ्वी हो तो संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए आत्मा के हित के लिए। आत्मानम आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के लिए संपूर्ण भूमंडल का त्याग किया जा सकता है। कुछ भी संसार का प्रलय हो जाए और वो कहा जाए उस व्यक्ति को कि तुम भजन मत करो, प्रलय नहीं होगा, तो हो जाए लेकिन भजन तो करना ही, संसार नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां तक कहा गया आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। तो कभी कभी इस तरह की यात्रा करना और सांसारिक उत्तरदायित्व से जो लोग मुक्त हैं, ऐसे महात्माओं का, मनुष्यों का संग करना चाहिए तो जीवन में अभ्युदय होता है। एक कथा मैं छोटी सी सुना रहा हूं, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में, प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय की कथा है। विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे दुर्योधन के दुर्व्यवहार से, और तीर्थयात्रा कर रहे थे। तीर्थयात्रा करते करते उन्हें मैत्रेय जी से भेंट हुई हरिद्वार में, उन्होंने भगवान की लीला सुना, और वहीं पर उन्होंने बहुत प्रश्न किया मैत्रेय जी से। अब गिनेंगे तो लगभग 23-24 प्रश्न किए। लेकिन मैत्रेय जी ने केवल तीन चार प्रश्नों का उत्तर दिया और उससे विदुर जी संतुष्ट हो गए और अपने ही पूछे हुए प्रश्नों का फिर उत्तर नहीं सुने। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों नहीं सुने? सुत जी कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण में उनका परम प्रेम हो गया था, इतना कृष्ण का स्मरण आ रहा था कि आगे वो सुनने में समर्थ नहीं हो सके, बराबर रो रहे थे, तो इसलिए मैत्रेय जी ने आगे नहीं कहा। तो मैत्रेय जी वहां से चले गए, तब विदुर जी को अपने परिवार की याद आई। सारे परिवार के लोग तो मर चुके थे, युधिष्ठिर महाराज राजा बने थे, धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे और अंततः महाराज युधिष्ठिर की ही शरण में रह रहे थे। उनका एक भी पुत्र नहीं था, उनके कोई मंत्री वगैरह नहीं थे, सब युद्ध में मारे गए। अब वो क्या करे, वे अंधे थे, उनकी पत्नी गांधारी जी भी अंधी थी जो अपने आंख पर पट्टी बांध करके रहती थी हमेशा। एक इतिहास में अद्भुत महिला है, अद्भुत, कोई जोड़ नहीं है संसार में गंधारी इस तरह से पतिव्रता। विवाह के पहले ही उसे पता चल गया कि मेरे पति देव अंधे हैं, लेकिन उसने उसको मना किया गया कि तुम दूसरा पति चुनो, क्यों ऐसा करते हो? कहीं नहीं, मन से मैं जिसको एक बार पति मान चुकी दूसरे पति नहीं बना सकती। और जो पति के घर पर आई तो उसने देखा कि हमारे पति जब दूसरी स्त्रियों को नहीं देख सकते हैं तो मैं भी जीवन भर किसी पुरुष को नहीं देखूंगी, और आंख पर पट्टी बांध करके रहती थी। तो जीवन के अंत में धृतराष्ट्र महाराज को युधिष्ठिर के शरण में रहना पड़ा है। और खिलाते कौन थे? भीमसेन परोसते थे भोजन, प्रेम से परोसते थे। उन्होंने 100 पुत्रों का वध किया था धृतराष्ट्र के, प्रतिदिन गिनते थे 18 दिन में कितने कितने लोग मारे गए, और प्रतिदिन संजय रिपोर्ट देते थे धृतराष्ट्र महाराज को। जब महाराज आज आपके इतने पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र कहते थे हाय हाय हाय, फिर कहते थे आगे कहो क्या हुआ, तो फिर भी वो पूछते रहते थे। वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, धृतराष्ट्र महाराज के आदेश पर युद्ध रुक सकता था, लेकिन अंततः ही रोके नहीं। तो विदुर जी अपने भाई का उद्धार करने के लिए घर आए, जिस घर से उनको बड़े अपमान के साथ निकाला गया था उस घर में स्वयं आए। इतनी ममता थी भाई के प्रति, मैंने सोचा कि वे इसी तरह से मर जाएंगे घर में, उनको लेकर के हिमालय जाना चाहिए। तो विदुर जी आए, रहने लगे। तो महाराज युधिष्ठिर इत्यादि ये समझ रहे थे कि चाचा जी अब यहीं रहेंगे, बहुत खुश हुए थे। जैसे शरीर में प्राण का संचार होता है, शरीर चेतना युक्त हो जाता है, तो इस तरह से पांडवगण बहुत खुश हुए कि चाचा जी घर पर आ गए, इनकी देखरेख में हम लोग रहेंगे। महाराज युधिष्ठिर बहुत बहुत याद करते हैं कि चाचा जी हमारे पिताजी नहीं थे तो आपने ही हमारा पालन पोषण किया, जैसे पक्षी अपने अंडे का पोषण करते हैं पक्षपात करके, उस तरह से आपने पक्षपात करके हमारा पोषण किया। पक्षपात का अर्थ है पंख का पात, पंख की छाया। पक्षी अपने अंडे को अपने पंजे से सहला सहला कर और पंख की स्नेहमयी छाया से बढ़ाते हैं। ये स्नेह का प्रभाव होता है कि पक्षियों के उस स्नेह से अंडे बढ़ते हैं। तो पक्षपात के दो अर्थ हुए, पंख की छाया और पक्षपात का अर्थ है साइड लेना। तो दोनों अर्थ महाराज युधिष्ठिर कहते कि विष से लक्षा भवन की आग से कैसे कैसे आपने हम लोगों को बचाया, आप नहीं होते तो हम नहीं जी सकते थे। तो वे लोग ये समझ रहे थे कि विदुर जी अब रहेंगे घर पर, लेकिन विदुर जी का एक पर्पस था धृतराष्ट्र महाराज को ले जाना ही मांग। तो एक दिन रात में वह धृतराष्ट्र महाराज को उपदेश करने लगे, महाराज आप जरा अपने पर विचार कीजिए, बहुत कठिन समय आ गया, आप जल्दी से जल्दी चलिए यहां से, जल्दी चलिए, अब आपका शरीर रहेगा नहीं, जल्दी चलिए और जीवन का जो परम लाभ है उसे प्राप्त कर लीजिए, चलिए जल्दी। तो धृतराष्ट्र महाराज उस समय भी कहते हैं कि हम कहां जाएं, यही ठीक है। तब विदुर जी कहते हैं ओ आपकी ऐसी मति है, आप एक तो जन्म से अंधे हैं, अंधर पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञस्य साम्प्रतम, एक तो आपको आंख नहीं मिली जीवन के शुरू से ही, तो आपने संसार को देखा नहीं, पुत्रों का भी मुख नहीं देखा, नहीं देखने पर भी आपकी इतनी आसक्ति है संसार में, तो देखने वालों की कितनी आसक्ति होगी। वही इस उम्र में आपने कुछ देखा नहीं और इस समय बधिर भी हैं आप, बहरे हैं, सुनाई भी कम पड़ता है, बहुत जोर से बोलना पड़ता है, विदुर जी ये कह रहे हैं। बुढ़ापा में तो श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम हो ही जाती है, तो अंधा पूरा ही वो बधिरा, इस समय आप बधिर हैं और मैं महाराज क्षमा कीजिएगा ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपकी बुद्धि भी कम हो गई है पहले से, मंद प्रज्ञस्य साम्प्रतम, साम्प्रतम का तो अधुना, इस समय आप मंद प्रज्ञ हो गए, आप देखिए सांस लेने में कितनी आवाज आपको हो रही है, सांस लेने में कंठ गुरगुरा रहा है और आप खा रहे हैं, छी छी कैसे आप जी रहे हैं, जिन पांडवों के पत्नी को आपने अपमानित करवाया भरी सभा में, जिन्हें विष दिया, जिन्हें लक्षा भवन की आग में जलाया, जिनका राज्य छीना, सब कुछ किया और फिर उन्हीं के दिए हुए अन्न को आप खा रहे हैं, और वो भी किसके हाथ से खा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आपके 100 पुत्रों का वध किया उसी के हाथ से आप खा रहे हैं, जी जी ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है, क्या खाएंगे। उचित नहीं है, अब जल्दी से निकलिए घर से। तो विदुर जी दो बात कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन का अंत आने पर अपने स्वजनों से अलक्षित गति से कहीं तीर्थ में जा करके, वन में जा करके, या अपने परिवार आदि से अलग रह करके और इंद्रियों के वेग से प्रभावित न होकर के शरीर छोड़ता है, उसको धीर कहा गया है। और जो व्यक्ति अपने से या दूसरे के कहने से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके प्रव्रजन करता है, प्रव्रजत स नरोत्तम, वह फर्स्ट क्लास का व्यक्ति। तो महाराज आप तो नरोत्तम तो बन नहीं पाए, तो कम से कम धीर तो बनिए। नरोत्तम वो नहीं है जो मरते समय घर से निकल जाए, बल्कि हृदय में धारण कर ले भगवान कृष्ण को और घूमे भगवान की कथा आदि के लिए, वो नरोत्तम है। नरेशु उत्तम नरोत्तम, तू कह रहे टीका में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि अब तो नरोत्तम तो बन नहीं पाए, जीवन बीत गया, तो अब धीर तो बनिए, चलिए मेरे साथ, निकलिए निकलिए निकलिए, चलिए हिमालय में आप शरीर त्यागेंगे तो भगवान का चरण कमल मिलेगा आपको, यहां की ममता में मत रहिए, चलिए। और युधिष्ठिर को नहीं बताना है, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो तैयार हो गए धृतराष्ट्र महाराज, उपदेश जो देश काल के अनुसार किया जाता है, हृदय पर टच कर जाता है। सैकड़ों बार उपदेश दिया था विदुर जी ने घर त्यागने से पहले, इनको सिखाया था, लेकिन सारा उपदेश राजनीतिमय होता था, क्या पांडवों के साथ समता कीजिए कीजिए, कभी नहीं किए। लेकिन अब ये हुआ कि आप आत्मा हैं और भगवान विष्णु में कृष्ण में मन लगाइए महाराज, शरीर चला जाएगा, शरीर का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, कृपा करके आप चलिए चलिए। तो महाराज धृतराष्ट्र तैयार हो गए, कहे ठीक है चलेंगे। तो जब महाराज धृतराष्ट्र घर से निकलने लगे तो उनके साथ गंधारी भी निकलने लगे, गंधारी निकल रहे। तो उसी श्लोक को मैं लिया, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्ष मनस्वी नाम सत्सम प्रहार। पतिम प्रयांतम, अपने पति को घर से निकलते हुए देखकर सुन करके, और पतिव्रता गंधारी निकल गई अपने पति के साथ। कुछ लोगों का कहना है महाभारत के अनुसार कि कुंती साथ में जा रही थी अपने बहन की सेवा के लिए, गंधारी की सेवा करने के लिए, और धृतराष्ट्र महाराज का हाथ पकड़े थे विदुर जी, और कुंती महारानी गंधारी का हाथ पकड़ कर चल रही थी। अद्भुत कुंती भी महान महिला है, इसी के पुत्रों के कारण कष्ट हुआ था इसके पुत्रों को, लेकिन फिर भी बड़े लोग किसी के अपराध को भूल जाते हैं। बड़प्पन यही है वास्तव में, जितना जल्दी किसी के दुर्व्यवहार को भूल जाए, सदव्यवहार को याद रख। तो विदुर जी गए लेकर के, तो गंधारी जी निकले हिमालयम, हिमालय की तरफ गई, हिमालय में गई। तो हिमालय की विशेषता बताते हैं शुद्ध गोस्वामी, कहते हैं न्यस्त दंड प्रहर्षम, जो लोग दंड देना बंद कर दिए हैं, किसी प्राणी को सताते नहीं हैं, जिनके जीवन में परम शांति है, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, उनको प्रहर्षम, हिमालय बहुत हर्ष देता है, हिमालय से उनको बहुत सुख मिलता है। हिमालय आज तक पता नहीं कितने असंख्य मनुष्यों को भगवान के धाम में भेजा है। वो स्थान ऐसा है जहां साधना करके, भगवान का ध्यान करके, जप करके सब लोग भगवान के धाम गए। अब देखते हैं इधर एयरपोर्ट्स हैं जगह जगह, लेकिन हिमालय वैकुंठ जाने का एयरपोर्ट, इसमें कोई संदेह नहीं, वहीं से जाते थे भगवान के धाम में लोग पहले। जब नारद जी की मां मर गई, जब नारद जी छोटे बच्चे थे, तो वे निकले हिमालय की तरफ और भगवान का दर्शन हुए। ध्रुव महाराज हिमालय से ही गए भगवान के धाम, वहीं पर विशाला बद्रिकाश्रम में विमान आया, वहां से चढ़ करके गए। जितने भी भक्तों का वर्णन मिलता है उसमें ज्यादातर हिमालय से ही वैकुंठ जाने का वर्णन मिलता है। वैसे और भी भारतवर्ष में वन है, नदियां हैं, तो वहां से भी भगवान के धाम में जाया जाता है, गए हैं बहुत से लोग, लेकिन लगभग 80% संख्या जो भागवत में लिखी गई है भगवान के धाम में जाने की, वो हिमालय से, वो बहुत पवित्र स्थान है। तो उसके विषय में कहा गया है कि जो न्यस्त दंड हैं, जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया है, जो भगवान के चरण को पाना चाहते हैं, जो किसी प्राणी को सताते नहीं हैं, कोई युद्ध नहीं, विवाद नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए हिमालय प्रहर्ष देने वाला है, प्रकृष्ट हर्ष देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर प्रश्न होता है कि अरे सुकुमारी गंधारी हिमालय के दुख को सहने के लिए कैसे तैयार हो गई। हिमालय तो हिम बहुल क्षेत्र है, बर्फ है वहां, और घोर जंगल, हिंसक जीव रहते हैं, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, कहीं भी बिचारी कैसे हिमालय के दुख को सहेगी, वो कैसे गई। तब सुत गोस्वामी कहते हैं सत्सम प्रहार, हिमालय का दुखद वास भी उसी तरह से सुख सुख देता है साधकों को, जैसे किसी वीर पर युद्ध भूमि में बाण मारा जाए और वह बाण उसके शरीर में चुभता है तो उस समय उसको हर्ष होता है, दुख नहीं होता है। हर्ष होता है, वो जानता है कि मैं इस युद्ध में पीठ न दिखा करके शरीर त्यागूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो यहां की अपेक्षा तो लाखों गुना स्टैंडर्ड का अकोमोडेशन होता है स्वर्ग में, और खान पान शरीर वगैरह सब कुछ बहुत विशेष होता है। यहां के शरीर को तो बार बार छीड़ना फाड़ना दवा खिलाना पड़ता है, फिर भी नहीं टिकता है ना। और किसी को कहा जाए इस समय कि आप ये शरीर छोड़ दीजिए, हम काट देते हैं और आपको देवता का शरीर देते हैं, तो प्रत्येक आदमी कहेगा नहीं नहीं नहीं, जीने दो, जब लास्ट में गिरेगा शरीर तब दे देना देवता का शरीर, लेकिन अभी इसी में रहने दो, है ना। इतनी ममता है, इतनी आसक्ति है शरीर के साथ, जो कहा जाए कि इससे लाखों गुना बेटर शरीर मिलेगा, उसमें बुद्धि भी लाखों गुना ज्यादा, बल भी, और भोजन सामग्री भी लाखों गुना बेटर, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ, फिर भी मनुष्य कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं स्वर्ग के विषय में या वैकुंठ के विषय में। जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी इस प्राकृतिक जगत का दिया जा रहा है, चाहे न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में या कंप्यूटर में, कहीं केवल यहां का इन्फॉर्मेशन भरा जा रहा है। तो जानता है कि इसके अलावा कहीं सत्य कुछ है ही नहीं, इसीलिए मन पर असर नहीं हो पाता। लेकिन पहले के लोगों को पूरा पता था, उसका एक कारण और भी था कि देवता लोग इस संसार में आते थे तो उनके सौंदर्य प्रभाव तीज बल को देख करके मुग्ध हो जाते थे, अरे हम भी स्वर्ग जाएंगे, इतनी सुंदर देवता। अब तो कोई भी कम्युनिकेशन है नहीं, बंद हो गया है, देवता आते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए लोगों को अब कोई आस्था है नहीं कि स्वर्ग है कि नहीं है, यह भी कुछ लोग संदेह करने लगे। और कुछ लोग तो मान लेते हैं कि यह तो मिथोलॉजी है, ये तो काल्पनिक कथा है, कोई स्वर्ग नहीं है नरक नहीं, लेकिन है। तो पहले के वीर जब युद्ध भूमि में होते थे, वे जानते थे कि यदि जीतेंगे तो राजा बनेंगे यहां, अगर मर गए तो फिर स्वर्ग रखा हुआ है, इससे बेटर राज्य मिलेगा। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, हत यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। इसको कहते दोनों हाथ में लड्डू है, कोई भी खाए, एक ही आकार का और एक ही क्वालिटी का दो लड्डू हो और दोनों हाथ में हो, जो बाएं हाथ चाहे दाएं हाथ, कोई भी खाए ठीक है। युद्ध में मरना भी बहुत अच्छा है और जीत जाना तो ठीक ही है। तो यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे युद्ध भूमि में मनस्वी जन वीरगण प्रहार सामने के प्रहार को अच्छा मानते हैं, उसी प्रकार से गंधारी भगवान में मन लगा चुकी थी, पति को जब उपदेश किया जा रहा था तो वो भी सुन रही थी, और हिमालय के उस प्रचंड दुख को सहने के लिए तैयार हो गए, उसे अच्छा लगने लगा है, ठंडा लगना या जमीन पर सोना, कोई भी कष्ट होना उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस कष्ट को सहने के बाद उत्तम गति प्राप्त होगी, भगवान के धाम में जाएगी, ये दृढ़ विश्वास था, इसलिए अच्छा लगता था। जैसे वैष्णव जन भक्त लोग कभी कभी स्वेच्छा से ही निर्जला एकादशी रखते, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं होता, निर्जला एकादशी रखते हैं। निर्जला एकादशी थोड़ा सा कष्ट देती है, कष्ट जरूर होता है, लेकिन जो लोग एकादशी के प्रति प्रेम करते हैं, निष्ठ हैं, उनके लिए उपवास ही आनंद देता है। दूसरे को खाते हुए देख करके वो सोचते होंगे क्या कचल मचल खा रहा है। न खाने में ही उनको आनंद होता है ना। और द्वादशी के दिन उनको जो प्रसन्नता होती है, वो खा करके एकादशी करने वाले को प्रसन्नता नहीं होती, तो खाया ही है तो को लोग कहते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, किसी भी दिन सवेरे पूछते हैं क्या ब्रेकफास्ट, तो कभी कभी हम पूछते हैं कि फास्ट क्या किए जो ब्रेक करना है। एक बार मैं ऐसे पूछा तो एक भक्त कहा रात भर नहीं खाए। वो फास्ट ब्रेक कर रहा है। अरे बाप रे। तो जैसे यहां पर उपवास में सुख है, पर किसके लिए? भक्तों के लिए। मंगला आरती में नींद छोड़ देना, ठंडा में पानी में स्नान करना, भगवान के सामने खड़ा होना, यह एक सुख है। और यह सुख केवल सात्विक सुख नहीं है, तो निर्गुण सुख है, अपराग ट्रांसडेंटल सुख है। तो उस सुख को जो ले लेता है, उसको क्या निद्रा छोड़ने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, आनंद के साथ निद्रा छोड़ देता है, या उपवास करता है, ठंडा सहता है, जो कुछ भी करता है। तो जिस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है कि मैं हिमालय में रहूंगा तो इसके बाद भगवान के घर जाऊंगा, तो उसको हिमालय का दुख क्या दुखी कर पाएगा? दो प्रकार का उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में मनुष्यों के लिए। एक तो युद्ध भूमि में पीठ न दिखाकर मरने वाले वीर का, और दूसरा उदाहरण दिया गया है पतिव्रता स्त्री का जो पति के साथ जल जाती है और उसको आग की लपटें बहुत सुख देती है, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। भले इतना सुंदर पतिव्रत धर्म बताया जाता था शुरू से ही, बच्ची को ये सब सिखाया जाता था। अब तो आज के युग में लगता है कि इन सब बातों को लोग मानेंगे ही नहीं कि ऐसा पहले होता था, है ना? इतना रियर हो गया कि लोग नहीं मानेंगे कि नहीं नहीं ये सच्ची घटनाएं। लेकिन अभी वृंदावन के पास की, गोवर्धन के पास की घटना है, गोवर्धन बरसाने के बीच में पलसो गांव, जहां की स्त्री सती हो गई थी और 21 वर्ष हुआ। हम लोग गए, कई बार जाते हैं दर्शन करने। उसके पति का शरीर छूट गया, पहले से ही लोग जानते थे कि ये तो सती होकर के रहेगी, तो तैयार हो गई। तुरंत फोन किया गया, मथुरा से पुलिस आई, उसको रोक दिया, पति के साथ नहीं जलने दिया। एक दिन एकांत में वो उठी, दिन का समय था, पुलिस लगी हुई थी चारों तरफ, और वो गई, पीला साड़ी पहन ली, पीला कपड़ा पहन ली थी, वो गई साथ में, कोई माचिस कोई आग कुछ लेकर नहीं गई। पति का शव तो जल चुका था दो तीन दिन पहले, कल राख थी, और जाकर के चिता पर ऐसी बैठी, तो पुलिस देख रही थी, बैठ रही है बेचारी, इच्छा है क्या करेगी। तो उसने कुछ ध्यान किया, ध्यान किया और भगवान का नाम कुछ बोल रही थी, बोलते बोलते उसके अंगूठे से और हाथ से आग निकलने लगी, और चारों तरफ से पुलिस देख रहा है, अरे ये क्या हो गया, आग निकलने लगी और उसी आग में जलने लगी। ये है अभी, मतलब 20-21 साल पहले की बात, और वहीं वो जल गई। क्या करे पुलिस, इस तरह का प्रभाव देखा गया। तो वीरों का युद्ध भूमि में मर जाना इस तरह से बाण सह कर, पतिव्रता स्त्री का अपने पति के साथ इस तरह शरीर त्याग देना, जल जाना आग में, एक अद्भुत उदाहरण है वास्तव में। जो आग की लपटों में से कोई उठ करके भाग गया, समय उनको आनंद आता था, कमल के शीतल पंखुड़ी के समान आग की लपटें लगती थी, और निश्चित है कि ऐसी स्त्री स्वर्ग पाती है। यदि पति वैष्णव है तो भगवान के धाम में भी वो निश्चित ही जाती है। ये दो उदाहरण हैं हम लोगों के संस्कृति का, वैदिक ग्रंथों का, कि कष्ट है लेकिन कष्ट उसके लिए कष्ट नहीं। इसी प्रकार हिमालय की यात्रा जाना आना एक कष्ट की बात है, रहना, लेकिन भक्त के लिए वही सुख की बात है। आजकल तो कोई खास कष्ट भी नहीं है, अब तो शरीर कमजोर हो गया पहले से, इसीलिए भगवान ने अब मोटर गाड़ी बना दिया, ठीक है, इतना पैदल नहीं जा सकते। अभी भी कुछ लोग पैदल जाते हैं उस रास्ते में, बीच बीच में रुकते हुए चले जाते हैं, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, अभी भी जाते हैं, देखे जाते साधु महात्मा। लेकिन अब सुविधा हो गई है, बस जाती है, कार जाती है, जीप वगैरह सब जाती है, पर एक बार ध्यान में आता है कि ओहो, यही वो स्थान है जहां लोग आकर के भगवान का धाम प्राप्त करते थे, भजन करते थे। हम भी गए थे एक बार, तो भागवत कर रहे थे, लेकिन भागवत छोड़कर के एकांत में जाकर के बैठते थे, पढ़ते थे, तो याद आता था कि क्या एक दिन ऐसा समय नहीं आ सकता है कि सारा संसार छूट जाए, बस हम रहे और भगवान रहे, बस कोई संबंध नहीं मिल रहे। तो पहले के लोग तो ऐसे होते ही थे। तो हिमालय से एक प्रेरणा मिलती है, एक भाव मिलता है। वैसे समय के परिवर्तन के साथ साथ स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है कि अब उस प्रकार के भजन निष्ठ व्यक्ति हिमालय में मिलना कठिन है। इस समय तपस्वी जन हैं, ज्ञानी लोग हैं जगह जगह, लेकिन कालक्रम से वो पवित्रता नहीं है। हिमालय से अधिक भक्ति वृंदावन में है, जगन्नाथपुरी में है, मायापुर में है, इन सब धामों में अधिक भक्ति है, भगवान से अधिक लगाव है। तो जो भी हो, किसी भी तरह से अपने को ऐसे स्थान से, काल से और पात्र से, वैष्णवों से जोड़ना चाहिए, जिससे कि भगवान कृष्ण में मन लगे, उत्तरोत्तर निष्ठ होता जाए। और खास करके जिनकी उम्र 45 या 50 के करीब है या उससे ज्यादा है, उन लोगों को तो अब उधर ही मुख करना चाहिए, है ना? इधर से मुख हटा करके अब उधर मुख करना चाहिए धीरे धीरे। आज के युग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहने में भी डर लगता है कि लोगों को बुरा लगेगा इसी के ऊपर है। लेकिन पहले की ये परंपरा रही है, बचपन से ही वैराग्य और त्याग सिखाया जाता था। बिना त्याग के जीवन की शोभा है ही नहीं। सभी विषयों में त्याग बहुत आवश्यक है, त्याग त्याग बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप कोई फ्लाइट ले रहे हैं और उसमें केवल ग्रहण करने का स्थान रहे, मतलब खाने का स्थान रहे, किचन रहे, और त्यागने के लिए कोई स्थान न हो, तो क्या हालत हो? रेस्ट रूम न हो तो इसको कोई कुछ कोई भी उस आवास को लेगा? बल्कि खाने की जगह न हो, इधर उधर से खा लेंगे, लेकिन रेस्ट रूम तो होना चाहिए। जीवन में और कुछ मिले या न मिले, लेकिन त्याग तो सीखना चाहिए, भगवान के लिए या अपने लिए त्याग करना है, अपने आत्मा, अपने स्वरूप को सुखी करने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए त्यागना चाहिए। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छम तनामयम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो बुद्धि से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं और मनीषी हैं, वे लोग अपने कर्मज फल को, कर्म के फल को त्याग करके, मुझे अर्पण करके और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामयम पदम, ऐसे स्थान पर जाते हैं, मतलब मेरे धाम में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वहां ब्रैकेट में कहते हैं बाई गोइंग बैक टू गॉड, तो मेरे धाम में आ जाते हैं। फलम त्यक्त्वा, त्याग की भगवान ने बहुत प्रशंसा किया, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि जहां तहां रास्ते में फेंक देना या छोड़ देना, त्याग का अर्थ है कि जो वस्तु जहां रखनी चाहिए वहां रख देना, दे देना, या मन भगवान को देना, बुद्धि भगवान को देना, इंद्रियों को भगवान में लगाना, मन से उनकी बात सोचना, शरीर को भगवान के मंदिर में ले जाना, दंडवत प्रणाम करना,
ये सब त्याग है, इसको त्याग कहते हैं। तो उस त्याग में अब है निद्रा का समय पर त्याग कर देना, और काम धंधा है उनको समय पर छोड़ देना, चलो अब टाइम हो गया अब भगवान के पास बैठेंगे। ये नहीं कि हमेशा उस कंप्यूटर पर ही बैठा रहे जब देखा जाए तो, नहीं, त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, जानबूझ करके त्याग करके, जैसे कंप्यूटर पर ही बैठता है वैसे भगवान के पास बैठेंगे, कुछ पढ़ेंगे शास्त्र भागवत पढ़ेंगे या कुछ सुनेंगे कैसेट सुनेंगे, ये सब करना चाहिए। और आप लोगों के लिए तो विशेष सुविधा है सब करने की, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर है, अपने घर में भी ठाकुर जी हैं, तो विशेष विशेष अवसर पर मंदिर जाना और रेगुलर रोज रोज जो सवेरे नहाना और भगवान को अर्पण करना, कीर्तन गाना, ये सब तो है ही, ये सब करना चाहिए, भले इसमें कष्ट हो कुछ भी हो, लेकिन यह आत्मा के हित के लिए, आनंद के लिए। मैं यह बता रहा था कि पतिव्रता गांधारी हिमालय के दुख को सहने के लिए तैयार हो गई, तो यह मान करके नहीं कि हाय हाय मैं दुख भोगूंगी क्या करूंगी, तो पति जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, यह बात नहीं है, उसे आनंद आ रहा था। और पति यदि हिमालय जा रहे हैं तो हिमालय तो उसके लिए स्वर्ग के समान है, जहां पति रहे तो पति के साथ है, पत्नी को रहने को मिले तो उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। वो जा रहे तो सुत गोस्वामी बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा ये बात समझा रहे कि हिमालय सुख देता है। हम लोगों को थोड़ा सा झलक है हिमालय के से प्राप्त सुख का, उस समय जिस समय धृतराष्ट्र महाराज थे हिमालय वास्तव में चालू हो जाता था लगभग रुड़की से, इस समय जो देखे हैं लोग लगभग हरिद्वार से 20-25 किलोमीटर पहले से चालू हो जाता था हिमालय घोर वन। तो धृतराष्ट्र महाराज गए, उनको लेकर के गए विदुर जी, तो हरिद्वार गए, उसमें हरिद्वार नाम नहीं था, गंगा द्वार नाम था। वहां गए, घोर जंगल था जहां गंगा जी 7 धाराओं में बहती थी, आज भी कई धारा में वहां बहती उस स्थान पर, 7 ऋषियों के आश्रम थे और गंगा जी कृपा करके 7 ऋषियों के आश्रम के निकट बहती थी। ऋषिकेश से इधर आने के बाद कुछ दूर में वे 7 धारा में हो जाती थी। यहां पर लिखा गया है कि जहां पर स्रोतो भी सप्त भी स्वर धुनी सप्त धा व्यधात सप्ता नाम प्रीतये नाना सप्त स्रोत प्रचक्षत। 7 ऋषियों की प्रसन्नता के लिए, उन्हें सुख देने के लिए श्री गंगा जी 7 धाराओं में बहती थी वहां, तो इसलिए उसको सप्त स्रोत कहते हैं, आज उसको सप्तर्षी घाट कहा जाता है, जहां हम लोग जाते थे स्नान करने के लिए वो सप्तर्षी घाट कहा जाता है। और पद्म पुराण में लिखा गया है कि श्रीमद्भागवत सप्ताह की पहली कथा गंगा जी के तट पर हुई थी और वहीं पर हुई थी, इसको आनंद वन भी कहते हैं। और दूसरी कथा फिर महाराज परीक्षित ने सुनी तो वह भी गंगा जी के तट पर। एक भक्त हमसे पूछा हरिद्वार में एक बार कि महाराज भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के तट पर लीला किए, वो गंगा जी के तट पर क्यों नहीं किए? तो मैं परंपरा देख करके बोला, मैं कहा कि भगवान ने सौभाग्य दिया श्री जमुना जी को, जमुना जी के तटों पर वे दोनों तट पर लीला किए, विविध प्रकार की गोचारण रास विहार कर, लेकिन भगवान ने गंगा जी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं लीला किया हूं जमुना के तट पर,
लेकिन उस लीला की कथाएं तुम्हारे तट पर होंगी। तो कथा गंगा जी के तट पर होती है। मैं तो ऐसे ही उत्तर दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान ने सोचा होगा। बहुत कथाएं गंगा जी के तट पर होती, बहुत बहुत, इधर हरिद्वार से लेकर के और उधर इसमें जो कलकत्ता तक, बहुत कथाएं गंगा जी के तट पर होती। एक नदी जमुना जी हैं भगवान की परम प्रिया, तो उनके तट पर भगवान ने लीला किया और उन्हीं लीलाओं की कथा गंगा जी के तट पर होती है। हरि लीला प्रभु, हरि लीला भी गए थे, हरि लीला प्रभु और नीलमणि प्रभु, राधा जीवन प्रभु, ये सब हरिद्वार की कथा सुने इस बार, और हिमालय गए कथा के बाद, तो बहुत प्रसन्नता होती है। गंगा जी में स्नान शरीर से, शरीर पावन होता है गंगा जी में स्नान करने से, और आत्मा मन पावन होता है भागवत में स्नान करने से। तो दो बार भागवत की कथा और दो बार गंगा स्नान, ये बहुत दुर्लभ अवसर था। अभी भी उसका आवेश है हम लोगों के मन पर, कि भगवान ने बहुत बड़ा भाग्य दिया गंगा जी में स्नान का और दो बार भागवत का। तो वही स्थान है जहां धृतराष्ट्र महाराज ने भजन किए, केवल 7 दिन किए, और 7 दिन उन्हें विधि बताया विदुर जी ने, कैसे जप कीजिए, ऐसे ध्यान कीजिए। 7वें दिन धृतराष्ट्र महाराज के शरीर से आग निकली, तो कहां से आग, ब्रह्म रंध्र से आग निकली, और आग से कुटिया में, कुटिया क्या था, ऐसे वन प्रदेश था, तो उसमें आग लग गई, टेम्पोररी कुटी बनाया गया था, उसमें आग लग गई, वो जलने लगी कुटिया, तो अपने पति के साथ ही गंधारी जल गई। तो गंधारी और धृतराष्ट्र महाराज एक साथ जल गए, इस पर तो भगवान के धाम गए। विदुर जी ये दृश्य देख रहे थे खड़े होकर, उनको बहुत खुशी हो रही थी और कभी कभी दुख भी हो रहा था कि भाई का संग छूट गया, लेकिन उनकी सदगति देख करके विदुर जी बहुत प्रसन्न थे, हर्ष शोक से युक्त होकर के फिर घूमने लगे। तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज ने बहुत अच्छा किया, शरीर गंगा जी में छूटा, गंगा जी किनारे, तो वे अब अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उनका मन था कि जहां पर जादुओं ने शरीर छोड़ा है, ये भगवान ने लीला किया है, एक जादू किया है प्रभास ने, वहीं मैं शरीर छोड़ूंगा। तो हरिद्वार से फिर द्वारका गए उधर प्रभास, और वहां जाकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और वहां उनको लेने के लिए देवता सब आए थे, तो जमराज जी के पोस्ट पर रहते, फिर वहां से चले गए, भगवान की सेवा करते थे। वो बैकुंठ नहीं गए क्योंकि भगवान ने आज्ञा दिया था, अभी उन्हें अपने पद पर रहना था, जमराज जी के पद पर, उसके बाद बैकुंठ चले जाएंगे। विदुर जी हरिद्वार से गए वहां शरीर त्यागने के लिए, अपने आंख से अपने भाभी और भाई की मुक्ति उन्होंने देखा, ये लोग बच गए बैकुंठ। तो इस प्रकार से हिमालय बहुत ही पवित्र स्थान है, गंगा जी के कारण तो और अधिक पावन है। कभी कभी ऐसे स्थान पर समय मिलने पर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, जीवन में एक प्रेरणा मिलती है। और विशेष करके तो हम भक्तों के लिए वृंदावन ही सब कुछ है, वृंदावन धाम कियो जिन्हें तिन औरहुं धाम कियो न किया। जो व्यक्ति वृंदावन किया है, गया है, वो और जगह जाए या न जाए सब बराबर है। क्योंकि वृंदावन भगवान की खास अपनी भूमि है, लीला भूमि है, जन्म भूमि भी है और लीला भूमि भी है। बहुत बड़ा भाग्य होता है जो व्यक्ति जाता है, और वही प्रभु फिर नवद्वीप में मायापुर में प्रकट हुए, केवल लगभग 500 वर्ष पहले, बहुत निकट। ये बहुत खुशी की बात है कि संसार में भगवान अभी केवल 500 वर्ष 500 वर्ष पूर्व आए। बहुत निकटता है, बहुत दूरी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु आए मायापुर में, जो उन्होंने गीता में कहा था उसका प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत अच्छा उपाय मिला है, दृष्टिकोण मिला है। यहां भी रह करके भगवान का स्मरण करना, वृंदावन का स्मरण, गंगा जी का स्मरण, जमुना जी का, और कभी अगर अवसर मिले तो वहां जाना है जाना। इस तरह से अपने टाइम का, अपने रूटीन का बैलेंस बना करके अब हमें भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। इधर कैसे प्रेम बढ़ेगा? इधर प्रेम बढ़ेगा चैंटिंग करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बारंबार भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यही कथा इस बार हुई थी यहां भागवत में, और पढ़ना सुनना, सत्संग में रहना भक्तों के साथ, कीर्तन कथा में, और शरीर का इस्तेमाल जरूर पूजा में करना चाहिए भगवान का। प्रतिदिन थोड़े ही समय करें, लेकिन जरूर करना चाहिए। सारा भार स्त्रियों पर ही नहीं डाल देना चाहिए, ठीक है तुम ही करो, सजा आरती करो और हमको फ्री छोड़ो। कभी कभी लोग अपने जाब का बहाना करके, पुरुष लोग ऐसे करते नहीं, उनको फुर्सत नहीं, तुम ही करो। एक बार तो एक भक्त को मैं कहा कि आप क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं महाराज हमको प्रेम नहीं, इसलिए भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, पहले ही वाले भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, तो करके तो देखिए स्वीकार करते हैं कि नहीं। आप मुकुट धारण कराएंगे तो नहीं करेंगे क्या है? आप पोशाक पहनाएंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे? अपना देह पवित्र होगा, धन्य होगा। कितने लोगों की, बच्चों की सेवा की, अपनी सेवा करते हैं शरीर की, तो भगवान को भी पोशाक पहनाना, सजाना, उनको फूल अर्पित करना। जी के कहने का आशय है कि बहुत लोग जानते हैं, द्वादशैत बीजानी मुकार नहीं है कि 12 लोग ही जानते हैं। उन लोगों ने प्रश्न किया कि जिस धर्म को कोई जानता ही नहीं है तो है या नहीं है, क्या प्रमाण है? तब उन्होंने 12 गिना दिया। तो बहुत लोग जानते हैं, गीता में भगवान इस बात को खोल कहे हैं, बहव ज्ञान तपसा पूता मदभाव माश्रिता जद ज्ञात्वा मुनय सर्वे परामगत इतो गता। तो बहुत भगवान बोलते हैं इस तरह से। यहां एक लक्षण दिया गया, इसको उपलक्षण कहते हैं कि 12 लोगों को गिना दिया गया। तो इसका अर्थ नहीं कि व्यासदेव नहीं जानते हैं या और ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, भृगु आदि नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो उन लोगों को समझाने के लिए ये कहा गया कि इतने लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को कुछ को गिना दिया गया। हम लोग जान जाते हैं प्रवचन सुन करके, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ करके, और क्यों नहीं जानेंगे? ज्ञान है ना कि भागवत धर्म क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, वास्तव में जीव का यही कर्तव्य, और क्यों नहीं जानेंगे? ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं केवल 12 ही जानते हैं ऐसा नहीं। और इनकी परंपरा मैंने बहुत से लोग जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, तो वेदव्यास देव को पढ़ाए हुए जानते हैं तो है न। और कोई प्रश्न?
जब अजामिल ने मरते समय नारायण बोला, तो फिर यमराज ने क्यों भेज दिया यमदूत को?
पहले ही भेजा था ना, पहले ही भेजे। जब रस्सी बांधा गया उसके गले में, तो उस समय अपने पुत्र को पुकारा स्नेह बस, तो उसमें तो समाप्त किया। और प्रश्न है?